ओम शांति। ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे, बाबा के मधुबन में स्थान स्थान से आकर के इकट्ठे हुए हैं। प्यारे बाबा ने कहा है कि दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हुए, यद्यपि हमारे वहां सेवा केंद्र है, वहां पर भी अपने स्थान पर भी ज्ञान मुरली वही चलती है, उसमें योग भी करते हैं और निम्न टीचर बाबा के बच्चे भी सब स्थानों पर हैं। और हम सबका एड्रेस जो है वो मधुबन ही है। हमारा नाम ब्रह्मा कुमार कुमारी है और परमानेंट एड्रेस जब तक हम इस शरीरों में हैं वो मधुबन ही है। फिर मधुबन में चाहे हम पांडव भवन में हैं या ज्ञान सरोवर में हैं, शांति वन में हैं, कहीं भी हैं, तो हम वापस अपने घर में बीच बीच में लौटते हैं। जैसे कन्या ससुराल से बीच बीच में अपने मायके में लौटती है, तो मायके में जो सुख है, माता पिता अपने परिवार के भाइयों के साथ जीवन बताकर, कुछ दिन बताकर, वो सुख और कहीं नहीं है। तो अबू अब्बा का घर है, हम सब अबू अब्बा के घर में भारत के कोने कोने से आए हैं। जबकि बाबा कहते हैं कि मेरे वो बच्चे भी हैं जो बहुत दूर दूर से, सात समुंदर पार से, कोई चिली से, कोई फिजी से, कोई आइसलैंड से, कोई ग्रीनलैंड से आते हैं। और फिर बाबा कहते हैं किससे मिलने आते हैं, तो एक बाप है, एक दूसरा बाप है जो इतनी दूर से आते हैं कि ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक से आते हैं, जो कि चांद सितारों सूर्य से भी परे है। और शिव बाबा तो परलोक से आते हैं जो उससे भी परे है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आत्माओं का और परमात्मा का, ब्रह्मा बाबा का आपस में मिलन होता है। ये मिलन रूहानी मिलन है, शरीरों का मिलन नहीं है। तो अन्य स्थानों पर हम शरीरों के अंदर महसूस करते हैं कि मैं आत्मा शरीर के द्वारा पाठ कर रही हूं, तो जिस प्रकार की भी गिनती होती है वो शरीरों के हिसाब से होती है। चाहे हमारा धन है, चाहे हमारा तन है, चाहे हमारे संबंध है, चाहे हमारे संपर्क है, लेकिन बाबा कहते हैं वहां पर भी और यहां पर भी वास्तव में हमारी असली जो अस्तित्व है वो आत्मा का है, रूहानी है, अनादि है, अविनाशी है। हम अपने को भी आत्मा मान के और अन्य आत्माओं को भी देखकर और आत्माओं का जो स्थान है शरीर के अंदर भ्रुकुटि के बीच, एक लाइट, एक सितारा चमक रहा है, उसको देखते हैं। और जो कुछ भी हम यहाँ बातचीत करते हैं, जो कुछ भी हम जमा करने की बात करते हैं, बचत करने की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, कौन सा समय विश्व घड़ी में चल रहा है, वो सारी हमारी शरीरों से नहीं, आत्माओं से संबंधित है। भक्ति में हम गाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सोवत है। अभी भी हमारे एक गीत में आता है यही बात, परंतु कौन सी रैन और कौन सी भोर, ये भक्ति में तो हम नहीं समझते थे, लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि अब सारे विश्व की बेहद की रैन कहो, शिवरात्रि कहो, ब्रह्मा की रात्रि कहो, ब्राह्मणों की रात्रि कहो, शक्तियों की नवरात्रि कहो, वो समाप्त होने वाली है। और प्रातः का समय है, अमृत वेले का समय है सारे विश्व का। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब सारे विश्व का अमृत वेला है, तो जागो। कौन जागे? आत्मा जागे। किससे जागे? अज्ञान अंधकार से जागे, अर्थात अपने को शरीर मानने का जो सबसे बड़ा अज्ञान है उससे जागे, और जाग करके आंखें खोलो। और बाबा कहते हैं आंखें खोल करके क्या देखो? कौन सी आंखें खोलो? ये स्थूल आंखों की बात नहीं है। कहा जाता है शिव ने तीसरी आंख खोली थी, तो काम विकार हो गया था। तो शिव ने, परमात्मा ने, कहते हैं शिव को ही परमात्मा नमः कहते हैं, किसकी तीसरी आंख खोली थी? क्या अपनी खोली थी? क्या उनकी आंख कभी बंद होती है? नहीं, वो हम आत्माओं की खोली थी, अर्थात हमें आत्मा का ज्ञान दिया था, और आत्माभिमानी बनने से ही काम विकार भस्म होता है, अन्य सब बुराइयां भी खत्म होती हैं। अब जो आज हम जिस बात को आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वो ये है कि विश्व घड़ी में क्या बजा है, और उस समय के अनुसार हमको अभी क्या कर्तव्य करना है। तो विश्व घड़ी में क्या बजा है, मोटे रूप से तो हमको पता ही है, फिर भी जो घटनाएं होती हैं, कोई विशेष प्रकार के वृतांत होते हैं, वो हमें अलार्म की तरह काम करते हैं। घड़ी में कुछ भी बजा हो, लेकिन घड़ी देखने के लिए जब कोई अलार्म बजता है तो व्यक्ति और ज्यादा ध्यान से समय को देखता है। तो पहला अलार्म बजा था, बाबा ने बताया है कि पिछले वर्ष मार्च में जब हमारी परम आदरणीय दादी जानकी राजयोगिनी, उन्होंने इस लौकिक शरीर को त्यागा था, अब और भी बड़ा दूसरा अलार्म की घंटी बजी है, जबकि हमारी परम आदरणीय दादी गुलजार जी ने भी अपने लौकिक को त्याग करके अपना सूक्ष्म रूप धारण किया है। ये दो बहुत बड़े अलार्म हैं, और अलार्म हमको क्या उठ जाना है, अच्छी तरह से उठ जाना है, उठे ही रहना है, और करना क्या है। तो इसलिए आज का जो विषय है कर्मातीत अवस्था, वो बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही रेलेवेंट है हमको चेतना देने के लिए, क्योंकि हम दूर दूर स्थानों से मधुबन में आते हैं और समझते हैं कि हम तो बाबा के श्री मत पर चल रहे हैं, बाबा के बताए हुए नियमों का वर्षों से पालन कर रहे हैं, हमने खान पान की शुद्धि रखी हुई है, हमने पांच विकारों पर विजय पाने का, पूर्णता विजय पाने का लक्ष्य रखा हुआ है, और विजय पाई भी है, और साथ साथ प्रकृति गीत बनने का भी हमने लक्ष्य रखा हुआ है, और उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये तो हम कर ही रहे हैं, लक्ष्य तो रखा ही हुआ है, फिर भी जब बिल्कुल फाइनल घंटी बजती है, फाइनल अलार्म बजता है, वो अचानक वो समय आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि अब पिछला सारे को फुल स्टॉप लगाना है, आगे का नया शुरू करना है, उसके लिए हमको क्या तैयारी करनी है। तो बाबा कहते हैं बहुत कुछ हमने जो इकट्ठा किया है उसको हमने रखा हुआ है, स्थान स्थान पर रखा हुआ है। कुछ बातें अपने मन में रखी हुई हैं, कुछ बुद्धि में रखी हुई हैं, और कुछ संस्कारों के रूप में हमने वो बातें जमा की हुई हैं। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि में भी जो रखी हैं उनको जब स्मृति में लाते हैं तो सोचना पड़ता है, सतयुग कहाँ है, सतयुग में क्या होता है। जब हम ये सोचते हैं तो बुद्धि में लाते हैं, बुद्धि काम करती है, ज्ञान को सामने लाते हैं, सतयुग कैसा था, सतयुग में क्या होता था, सोचना पड़ता है, अर्थात सोचकर उस सीन को सामने लाना पड़ता है। जैसे कोई कहे लड्डू, तो लड्डू क्या होता है, कैसा होता है, तो सोच करके सामने लाना पड़ता। दूसरा है मन, तो मन क्या है, ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर पे नेचुरली उन चीजों की ओर आपे ही जाता है जो उसको पसंद होती है। आप उसको हटाना भी चाहेंगे तो फिर भी वो आप हटाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी वो खिसक करके स्वतः ही उन चीजों में जाकर के जुड़ जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मन आसानी से जुड़ जाता है जहां उसको रुचि होती है, जहां वो फायदा देखता है, जहां वो सुख देखता है, जहां उसको सम्मान प्राप्त होता है। फिर तीसरी बात है संस्कार। संस्कार तो पीछे रहते ही हैं, लेकिन संस्कार, बहुत सारे संस्कार तो हमने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा से जमा किए हैं, और बहुत सारे संस्कार हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, जो अज्ञान की वजह से, भोग की वजह से और गलत धारणाओं की वजह से, जीवन को गलत तरीके से बिताने की वजह से वो संस्कार भी हमारे अंदर थे। अब बाबा कहते हैं नए संस्कार भर रहे हो, प्राणी भी साथ में है, तो संस्कार मिक्स हो जाते हैं। कभी हमारे नए संस्कार परिस्थिति को देखकर, स्थान को देखकर इमर्ज हो जाते हैं, कभी हमारे पुराने संस्कार वातावरण को देखकर, वायुमंडल को देखकर इमर्ज हो जाते हैं। नए संस्कार होते हैं तो हम शांति की, संतोष की महसूसता करते हैं, और जब पुराने आ जाते हैं तो हम परेशान होते हैं और क्षत्रिय की तरह उनको समाप्त करने की मेहनत करते हैं। तो सारा ज्ञान का आपने आज की मुरली बहुत अच्छी तरह से सुनी है, और वो मुरली बहुत ही सार गर्भित है कि भगवान कहता है अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से जो कुछ करते हो उसमें एक तो मेहनत लगती है और कई बार सफलता मिलती है, कई बार सफलता कम मिलती है, क्योंकि जो हमारा शत्रु है, जिसके ऊपर जीत पानी है, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, चाहे वो मनोविकार हैं, चाहे वो प्रकृति है, वो प्राण है। आज वो प्राणी स्थिति में भी है, प्रकृति भी प्राणी हो चुकी है, हमारे मनोविकार भी 63 जन्मों के आए हुए हैं, और कर्म इंद्रियां भी हमारी अधीन हो चुकी हैं। तो बाबा कहता है देखना ये है, एक तरफ दो अलार्म बज चुके हैं, अब फाइनल तीसरा अलार्म ही बजना है, और वो कभी भी बज सकता है। दूसरी ओर हमको जो कुछ हमने जमा किया है वो हमारे अंदर तो है, लेकिन वो हम जमा होने के बावजूद भी हम उसको समय पर उपयोग नहीं कर पाते। कभी तो कोई शक्ति चाहिए तो दूसरी आ जाती है, कभी वो शक्ति जो आनी होती है लेट आ जाती है, कभी वो शक्ति आती भी है, हम शक्ति को यूज भी करते हैं, लेकिन अचानक हमारे अंदर अलबेलापन आ जाता है कि अब तो ठीक ठाक हो गया, उसी वक्त शत्रु वार कर देता है। ये रोज की हमारी परिस्थिति है। तो बाबा ने आज भी क्या कहा है कि बच्चे मैं یعنی مدد دینے والا اتھا ساگر ہوں، ہر چیز کا ساگر ہوں، اور تم مدد کے ادھیکاری ہو، مدد کے پاتر ہو، لیکن مدد لینے کے لیے ایک ہلکی سی کنڈیشن ہے، کیونکہ ورنہ وہ کنڈیشن نہ ہو تو سبھی کو مدد دینی پڑے اور سبھی مدد لے کر ایک سمان ہو جائیں۔ تو کنڈیشن کیا ہے؟ چھوٹی سی، پہلا قدم ہمیں رکھنا ہے تو بابا پدما پدم گنا آگے بڑھے گا۔ ہمت کا ایک قدم ہم نے رکھنا ہے تب بابا ہمیں اتھا مدد دے گا۔ لاٹری کا ٹکٹ ہمیں خریدنا ہے تبھی ہمارا بمپر پرائز نکلے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بمپر پرائز کے ادھیکاری ہوتے ہوئے بھی اس سے ونچت ہو جاتے ہیں۔ پرماتما کی مدد جس کو مل جائے اس کے لیے تو ہر چیز مشکل تو رہتی ہی نہیں ہے، آسان ہو جاتی ہے، وجے اس کو لگاتار ملتی رہتی ہے۔ لیکن پرماتما کی مدد کے ادھیکاری ہوتے ہوئے بھی، اس کے بچے ہوتے ہوئے بھی، بابا کہتے ودھی کا پریوگ نہیں کرتے۔ اب کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے بابا کہتے ہیں کہ وہی من جو پرماتما کی طرف لگنا چاہیے، شیو بابا کے ساتھ من منا بھاو ہونا چاہیے، وہی من کہیں اور لگنے کی اس کو عادت ہے، اور جگہ بھی لگا رہتا ہے، شیو بابا میں بھی لگاتے ہیں۔ تو بابا نے کہا ہوا ہے میرا تو ایک شیو بابا دوسرا نہ کوئی، اور ہم یہ کہتے ہیں ہاں میرا تو ایک شیو بابا، لیکن بالکل لاسٹ ٹائم میں جب اور کوئی سادھن نہ ملے اور کوئی کام نہ کرے شکتی تو شیو بابا میرا، اس کے پہلے دوسرا نہ کوئی کی بجائے دوسرے بھی میرے اور شیو بابا بھی میرا۔ تو یہ کھیل بابا کہتے ہیں میں بچوں کا دیکھتا رہتا ہوں۔ اب کیوں من اور طرف لگا ہوا ہوتا ہے؟ کہ بابا کہتے ہیں ویراگ ورتی تو آتی ہے، ویراگ ورتی سمے پرتی سمے آتی ہے۔ جب ہمیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا موہ جھوٹا ہے، دنیا کا سنے جھوٹا ہے، جب ہمیں دھوکا ملتا ہے ہمیں ویراگ ہے، متر سمبندی کے ہمیں ویراگ آتا ہے، جب کوئی ارتھکیک آ جاتا ہے تو درگھٹنا ہو جاتی ہے تو ہمیں ویراگ آتا ہے۔ لیکن کیا وہ ویراگ بے حد کا ہے؟ کیا وہ ویراگ سدا کال کا ہے؟ اور کیا وہ ویراگ سوتا ہی رہتا ہے یا اس کو لانا پڑتا؟ تو اس لیے بابا کہتے ہیں ایسے سمے پر جب ہم آتما سروپ ہیں، آتما کو اپنا پارٹ پورا کر کے جانا ہی ہے، یہ کوئی مرتیو کا سوال نہیں ہے کہ مرتیو کے بعد نیا جنم لینا ہے، فائنلی آتما کو اب پرم دھام میں جانا ہی ہے، ناٹک پورا ہو رہا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں اس دکھ کی دنیا میں کیا فائدہ ہے، یہ تو نیرس دنیا ہے، اور دنیا کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی بیچارے دکھی ہیں۔ اب بھگوان تمہارے بھائی بہن ہے، ان کو بھی ترس کر کے ساتھ لے کے جانا ہے، اس دکھ سے چھڑانا ہے۔ تو پہلی چیز جو چاہیے وہ ہے بے حد ویراگ ورتی، سدا کی ویراگ ورتی، سب چیز سے ویراگ ورتی، اور سہج اور سوبھاوک ویراگ ورتی، اس دنیا سے، اس پرانی دکھ کی دنیا سے، جس کو بابا کہتے ہیں کہ گھرنا ہونی چاہیے۔ اب پرانی دنیا سے گھرنا ہم دوسرے کو بھی سنا دیتے ہیں، اپنے اندر بھی سمجھتے ہیں یہ پرانی دنیا میں کیا رکھا ہے، کبھی بھی کسی کو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، لگاتار وہ گھٹنائیں گھٹتی رہتی ہیں۔ پھر بھی اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں تو کیا پرشن یہ ہے، کیا ستیوگ یا سورگ میں کچھ بھی خراب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے؟ کیا اتر دیں گے آپ ہاں یا نہ؟ کیا ستیوگ اتھوا سورگ میں کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا اتر کیا ہوگا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیا वहां पर कुछ व्यर्थ हो सकता है? हम कहेंगे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं हो सकता, वहां तो डस्टबिन होता ही नहीं, व्यर्थ के लिए कुछ जगह ही नहीं, क्योंकि व्यर्थ होता ही नहीं। ना समय व्यर्थ होता है, ना बोल व्यर्थ होता है, ना कोई भी चीज हमारी कोई सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं वो ना हो, ऐसा भी नहीं होता है। टाइम हमारा अस्पताल में जाने का, वेट करने का, कई प्रकार की जो आजकल चीजें हैं, यहाँ से वहां जाने पर वेस्ट होता है, वहां वेस्ट नाम का चीज ही नहीं। अच्छा, अब बाबा हमेशा कहते हैं जब सत्युग कंट्रास्ट करते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट कंट्रास्ट करते हैं कि ये दुख धाम है वो सुख धाम है, कहते हैं कि नहीं, ये अशांति की दुनिया है वो सुख शांति की दुनिया है। अब आपने ये सोचना है क्या कलयुग में कुछ अच्छा हो सकता है? जब हम कहते हैं सतयुग में कुछ खराब नहीं हो सकता, तो क्या कलयुग में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ ठीक हो सकता है, कुछ अच्छी चीज हो सकती है जिसको हम पकड़ के रखें? तो यहां कहा जाते हैं, हम ये तो मानते हैं कि सतयुग में कुछ भी बुरा व्यर्थ नहीं होता, पर इसमें हम धोखा खा जाते हैं कि नहीं, कलयुग में भी कुछ अच्छा, कुछ काम की चीज हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कलयुग में देखते हैं सेब खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि सेब खाने से बीमारी दूर भागती है, हम स्वस्थ होते हैं। कलयुग में शरीर को सैर करवाना, शरीर को व्यायाम कराना बहुत अच्छा है, क्योंकि संगम का युग भी साथ है, और संगम युग बड़ा अमूल्य है, हमारी आयु लंबी होगी, हम व्याधि में नहीं आएंगे। अब यह है धोखा, जब जर्जरी भूत दुनिया है, जब तमो प्रधान दुनिया है, बाबा कहता है कि बच्चा जो होता है महात्मा के समान होता है, तो क्या कलयुगी बच्चा जैसे सांप का बच्चा हो, छोटा सा बड़ा खूबसूरत लगता है, अभी उसका डंक भी नहीं निकला है पर है तो सांप का बच्चा, इसी प्रकार से कलयुगी बच्चों को आप देख लें, देखने में तो बच्चे ही लगते हैं, बड़े अबोध लगते हैं, भोले भाले लगते हैं, लेकिन उन्हीं के संस्कार जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, आजकल तो बच्चे रूप में ही कितने तंग करने वाले, परेशान करने वाले, आपको बंधन में बांधने वाले होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की कोई भी चीज, कोई बहुत बड़ा महल देखते हैं, कोई मकान देखते हैं, बहुत सुंदर बना हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, बड़े अच्छा डिजाइन है, आप मान लो बॉम्बे में अंबानी का मकान कहते हैं बहुत अच्छा है, तो आप सोचते हाँ ऐसा मकान हो तो ये धोखा नहीं, लोगों को जोर देते नहीं, नहीं मुझे तो कूलर भी नहीं चाहिए, एसी चाहिए, जैसे कि एसी स्वर्ग है और वो बहन जी आप बहुत आप ठंडी हवा आती है, आप कहते हैं वाह आज तो भाई नींद बहुत अच्छी आ गई, स्वर्ग में आ गए हम, तो बाबा कहता है क्या ये धोखा नहीं है। इसलिए जो गीता के लास्ट शब्द हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जब तक हम पूरी तरह से पुरानी दुनिया से, दिल से, दिल की गहराई से इससे वैरागी नहीं बनेंगे, इससे घृणा नहीं करेंगे, इससे नफरत नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ मजबूरी से हम अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए जी रहे हैं, या बाबा का संदेश देने के लिए हम को ये जीवन मिला है, या जो सांस मिले हैं वो अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए मिले हैं, और ये स्मृति हमें सदा रहे। तो बाबा क्या कहते हैं, रोज की मुरली हमें स्मृति दिलाती है, बीच बीच में जैसे बड़े बड़े बातें होती हैं, अलार्म बजते हैं, वो हमें स्मृति दिलाते हैं, जैसे अभी दादी गुलजार जी ने इस देह को त्याग दिया तो वो भी स्मृति दिलाते हैं, कोई घटनाएं होती हैं दिल को ठेस पहुंचाने वाली वो हमें स्मृति दिलाती हैं, लेकिन जैसे अंधकार घोर हो उसमें थोड़ी सी लाइट चमके हमें कुछ दिखाई दे, फिर अंधकार आ जाए, क्योंकि अंधकार का राज्य है, रावण का राज्य है, उसमें हमारी तीसरी आंख हर वक्त खुली ना रहे तो जरूर हम धोखा खा जाएंगे। बहुत से भाई बहन हैं, अगर वो अपने दिनचर्या को चेक करें सुबह से शाम तक, तो बहुत सारा जो वो प्राप्ति समझते हैं वो शरीर और शरीर के वस्तुओं की, शरीर के संबंधों की प्राप्ति है। शरीर का पद बड़ा हो जाए, ये कहते हैं कि हर एक ये सोचता है कि मेरा पद, बाबा कहता है ना, हर एक सोचता है मैं स्टेज पर क्यों ना आ जाऊं, मैं किसी से कम हूं, मुझे कोई डिग्री मिल जाए, मुझे कोई उपाधि मिल जाए। तो बाबा कहता है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी से बड़ी उपाधि दुनिया में कौन सी है। आपको इतनी ऊंची उपाधि मिली हुई है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ब्राह्मणों का दिन ब्राह्मणों की रात, ब्राह्मण ऊपर जाते हैं तो सारी दुनिया का भला हो जाता है, ब्राह्मण नीचे आते हैं तो सारी दुनिया, पेड़ पौधे पशु पंछी सब नीचे आ जाते हैं। इतना श्रेष्ठ चोटी का बाबा ने टाइटल दिया हुआ है, और स्वयं बीज ने हमको जड़ में जन्म दिया है, सारी शक्तियां दी हैं, सारे गुण दिए हैं, और क्या चाहिए, वरदान भी दिए हैं। रोज एक वरदान तो मुरली में ही मिल जाता है, और क्या चाहिए, लेकिन हम उसकी कदर करते हैं। बाबा कहता है आपको अमृत वेला दिया गया विशेष, हम उसको उसी महत्व और उसी कदर से देखते हैं। बाबा कहते हैं आपको ट्रैफिक कंट्रोल दिया गया थोड़ा सा, कि कम से कम बीच बीच में आपको अभ्यास होगा विदेही बनने का, क्या आप उतने ही महत्व से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। बाबा ने कहा आपको भोजन बनाने और भोजन खाने में, भोजन में भी शक्ति भरने, दवाई में ताकत की गोली खा लेंगे, ताकत का इंजेक्शन लगवा लेंगे, वो सारी देहभान की एक्टिविटी है, लेकिन आत्मिक शक्ति आती है उस महत्व से करते हैं। तो बाबा ने कहा सब कुछ मिलते हुए, क्योंकि उसके महत्व को घटा देते हैं और उसकी विधि को थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या होता है, वो प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। अब जब वंचित हो जाते हैं और देखते हैं कि बाबा की श्रीमत के होते हुए भी हमको वो प्राप्ति नहीं है, तो पुराने रास्ते के ऊपर ही चलना शुरू कर देते हैं, जो कि वास्तव में प्राप्ति का रास्ता नहीं है, एक छलावा है और प्राप्ति दिखती है। इसलिए बाबा ने कहा है कि थोड़ी अपनी निशानियां, अपने चिन्ह, आप जो आपके अपने आप को जज करने के, टेस्ट करने के जो साधन है, उसको ध्यान में रखो। और उसमें एक तो बाबा ने बेहद की वैराग वृत्ति सदा के लिए प्राणी दुनिया से बताई है, और दूसरी कर्मातीत अवस्था। अब बाबा कहते हैं कि आप कहाँ तक तैयार हैं, वास्तविक तौर पे एवर रेडी हैं, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण निशानी है जिसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, उपराम वृत्ति। अब न्यारा और प्यारा जिसको बाबा कहते हैं, तो हमको देखना है कि हम कितना समय आत्मिक स्वरूप में, रूहानी स्वरूप में रहते हैं, और अपना पिता हमको कितना समय प्यारा रहता है, और हम इस दुनिया में रहते हुए भी कितना समय न्यारे रहते हैं। बाबा ने हमको हमारे चार जो अलंकार हैं, उसमें कमल पुष्प का विशेष अलंकार दिया हुआ है। ब्रह्मा जी को भी विष्णु के नाभि कमल से कमल आसन पर बैठा हुआ दिखाते हैं। अब बाबा कहते हैं कमल फूल समान अवस्था का मतलब क्या है, कि न्यारे रहना, ऐसे नहीं कर्म नहीं करना, कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से न्यारे रहना, क्योंकि कमल के फूल पर किसी चीज का असर नहीं होता, उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, चारों तरफ पानी होता है, लेकिन वो चाहे पानी कितना भी चढ़ जाए वो उससे ऊपर रहता है। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया कीचड़ की दुनिया है, कीचड़ पट्टी की दुनिया है, बाबा ने मुरली में ये शब्द आज भी यूज किया है। तो इस कीचड़ पट्टी में रहते हुए, झोपड़पट्टी में जैसे लोग रहे और न्यारे रहे, हम कमल की तरह रहते हैं। तो बाबा ने सिंपल बताया है, जो दुनिया से न्यारा है वो दुनिया का प्यारा है। अब हमने देखना है इसका प्रैक्टिकल, मिनट टू मिनट, संकल्प टू संकल्प, व्यवहार जो हम रेगुलर करते हैं ड्रामा की टिक टिक के अनुसार, उसमें हमारी क्या अवस्था है। क्या हम अच्छी अच्छी चीजें जिसको हम कहते हैं उसके भी लगाव में आते हैं कि भाई सेवा करना तो अच्छा है, मैंने एक सेवा स्थान बनाया हुआ है, अब दूसरा बना रहा हूँ, पूरी लगन से बना रहा हूँ, उसमें दिन रात जुटा हुआ हूँ, कोई रुकावट आती है तो मैं उसको हटाने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना योग भी मिस कर रहा हूँ, सेवा करना भी मिस कर रहा हूँ, कोई तो मिलने आता है उससे पूरी तरह बात भी नहीं करता, क्योंकि तो मेरा ध्यान कहाँ है कि मुझे नया सेंटर बनाना है, सबसे पहले तो वो बनाना। अब बाबा कहते हैं, क्या इसको कर्मातीत अवस्था कहेंगे या इसको लगाव की अवस्था कहेंगे। अच्छी चीज से ही लगाव है, लेकिन उसने इतना लगाव है कि अन्य हम चीजों को पूरी तरह नॉर्मल ना रहते हुए भी उसको कर रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा? क्या भोजन के समय भोजन नहीं करेंगे, करवाने वाले डिस्टर्ब होंगे, रात को सोने के समय आपको नींद नहीं आएगी, सुबह आपको अमृत वाले नेचुरल फ्रेश आंख नहीं खुलेगी, कोई काम कर रहे होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे तो तेजी तेजी से करेंगे, वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, चल रहे होंगे तो भाग भाग के चल रहे होंगे, तो क्या ये नॉर्मल अवस्था है? काम तो अच्छा कर रहे हैं, अगर अच्छा काम भी हमारी स्थिति को हिला दे तो उसको बंधन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या हम कर्मातीत होके वो कर रहे हैं या कर्म बंधन में आके कर रहे हैं? इसकी भेंट में आप चलो गुलजार दादी को ही देख लो, मम्मा को हमने आपने ना देखा होगा, ब्रह्मा बाबा को आपने ना देखा होगा, उनकी कथाएं सुनी होंगी, ब्रह्मा बाबा अंतिम वर्षों में कितने उपराम रहते थे, बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में अपना वो वर्णन भी किया हुआ है कि देखो तुम देखते नहीं थे कि बाबा तुमसे बात कर रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि बाबा यहाँ है ही नहीं है, तुम देखते नहीं थे बाबा अंतिम वर्षों में बिल्कुल न्यारा न्यारा सा लगता था, कहीं और दिखता था, यहाँ है ही नहीं है, वो क्या था? उपराम अवस्था थी, बेहद के वैराग की अवस्था थी, कर्मातीत अवस्था थी। तो अगर हम शॉर्ट में देखें, कर्मातीत अवस्था का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम दुख की चीजों से, अशांति करने वाली चीजों से, परेशान करने वाली परिस्थितियों से न्यारे हों, कर्मातीत अवस्था का ये भी अर्थ है कि जो अच्छी वस्तुएं भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, उसके भी हम बंधन में बंध गए तो हम बंधनी आत्मा कहलाएंगे, अतीत आत्मा अथवा मुक्त आत्मा नहीं कहलाएंगे। अर्थात हम परवृत्ति वाले नहीं कहलाएंगे, परवृत्ति वाले कहलाएंगे। तो क्या मतलब हुआ इसमें? बाबा कहते हैं चेक करो कि कर्मातीत है कि नहीं है, क्योंकि चेकिंग भी एक ऊपर ऊपर की होती है कि मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन बाबा कहता है दूसरी चेकिंग भी चाहिए, वो क्या है? तो बाबा कहते हैं एक मोटी चेकिंग है मैं और मेरा। अगर हम सचमुच हर कर्म को कर्मातीत बन के करना चाहते हैं तो मैं और मेरा को चेक कर लीजिए। मुझे ऐसे क्यों नहीं कहा गया, मुझे क्यों नहीं कहा गया तुम सेवा करो, पहले दूसरे को कह दिया, जब उसने ना की तब मुझे कहा है तो मैं नहीं करूंगा, ये अधमने से मानूंगा। इसी प्रकार से मैं बहुत जगह आती है, मेरा स्थान, मेरी पोजीशन, मेरा सेंटर, मेरा कमरा। दादी अगर रुमाल के साथ भी आप मेरा लगा दोगे, मेरा रुमाल कहाँ गया, वो भी आपके कई संकल्पों को कंट्रोल कर लेगा। तो ये मैं और मेरा हमारे में आता है, या हम सचमुच निमित्त बन के निर्माण बन के स्तुति और निंदा दोनों में बराबर रहकर, ऐसे नहीं स्तुति में खुश और निंदा में उदास, हानि और लाभ दोनों में बराबर रहकर, जीत और हार में, जय और पराजय में, दोनों में बराबर रहकर, मान और अपमान दोनों में बराबर रहकर, गर्मी और सर्दी, उतार और चढ़ाई, हर एक में बराबर रहकर, न्यारे होकर, साक्षी होकर, जैसे कोई दूसरे का काम हो रहा है, अगर हम उसको करते हैं तो बाबा कहते हैं कि निमित्त ही निर्माण रह सकता है, वरना उसमें छुपा हुआ सूक्ष्म अभिमान जरूर आ जाएगा। जैसे बाबा ने माया के कितने रूप बताए हैं कि माया का प्रत्यक्ष रूप भी है, माया का रॉयल रूप भी है, माया का सूक्ष्म रूप भी है, माया का ईश्वरी रूप भी है, हम ईश्वरी कार्य में भी माया आ रही है। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए कि मैं और मेरा। फिर बाबा कहते हैं कि हम कहते हैं हमारा पिता प्रेम का सागर है, हमारा पिता दया का सागर है, हमारा पिता किसी से घृणा नहीं करता है, हर चीज को ड्रामा में एक्यूरेट कहता है, क्या हम ऐसा करते हैं? हमें कुछ व्यक्तियों से, कुछ आत्माओं से ज्यादा स्नेह है इसलिए कि वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ आत्मा और व्यक्तियों से हमें स्नेह नहीं है, बल्कि एक प्रकार की छुपी हुई घृणा है, क्योंकि वो हम कहते हैं यज्ञ का नुकसान कर रहे हैं। बाबा कहता है अमृत वेले आके बैठो, ये बैठते ही नहीं। बाबा कहता है ऐसे करो, ये करते ही नहीं। बाबा कहता है याद करके भोजन खाओ, ये तो सीधा ही खाना शुरू कर देते हैं। मतलब उनकी कमी कमजोरी देखकर उनका परचिंतन में हम लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या ये कर्मातीत अवस्था है? क्या ऐसा नहीं कि उनका सोचते सोचते हम अपने स्वचिंतन को भूल ही जाते हैं? आत्मा को अच्छा पात्र देखकर बाबा ने कहा कि पात्र देखकर तुमको ज्ञान देता हूँ, हम भी पात्र देखकर देते हैं। कोई व्यक्ति ज्ञान को नहीं समझ पाता, कुछ प्रश्न करता है तो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, इसको ज्ञान, ये तो पात्र ही नहीं है, उसको श्राप भी दे देते हैं, ये तो कभी ज्ञान समझेगा नहीं, ब्रह्मा से भी नहीं समझेगा, तो हम क्या उसका कल्याण कर पाएंगे? डॉक्टर के मरीज आता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पात्र देखकर इसका इलाज करूंगा, बल्कि जितना दुखी मरीज आएगा वो ज्यादा पात्र है। इसलिए बाबा कहता है कोई कमजोर आत्मा है, कोई समझ नहीं पा रही है, किसी के अंदर अपनी शक्ति नहीं है, मुझे उसको शक्ति देकर पात्र बनाना है, या कि उसको जिन्ना के पात्र ही नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बाबा कहता है जब आप ज्ञान में आए तो मैंने क्या कहा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, कल पहले वाले बच्चे, अपना अधिकार लेने आए हो। बाबा कहते मैंने ये तो नहीं कहा ए पापों से भरे हुए बच्चे, हे विकारों से लिप्त बच्चे, हे दुनिया के अंदर फंसे हुए कीचड़ के अंदर, कीचड़ में भरे हुए बच्चे आओ, नहीं। तो बाबा कहता कि मैंने भी तो कल्याण किया अच्छा देखकर। हम फटाफट दूसरे के गुण धारण नहीं कर पाते, या ईर्ष्या बस कि वो व्यक्ति इतना उसका मान उसको क्यों मिल रहा है, हम बोलना शुरू कर देते हैं ये तो ऐसा है, उसका अवगुण देखना शुरू कर देते हैं। अब बाबा कहता है क्या ये कर्मातीत अवस्था है? तो कर्मातीत अवस्था का मतलब क्या है कि हम कर्मों के अच्छे या ना अच्छे किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त हों। जैसे एक नाटक का एक्टर प्रभाव से मुक्त होता है, उसको आप कुली बना दो, उसको आप सेठ बना दो, उसको डॉक्टर बना दो, उसको राजा बना दो, उसको भिखारी बना दो, लेकिन वो मुक्त होता है कि ना तो मैं भिखारी हूँ, ना कुली हूँ, ना राजा हूँ, ना डॉक्टर हूँ, मैं तो अलग व्यक्ति हूँ, मेरा घर अलग है, मेरा नाम अलग है, मैं एक्टर हूँ, ये मेरी एक्टिंग है। तो क्या हम ऐसा करते हैं? या एक्टिंग को ना जानकर किसी ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि जाओ गेट पर खड़े हो जाओ पहरा दो, तो मैं सोचने लग जाता हूँ ये कोई ड्यूटी है? ड्यूटी तो वो है जहाँ मुझे भाषण करने का मौका दिया जाए। तो बाबा कहता है एक्टर को तो भूल गए ना, साखीपन को तो भूल गए ना, अपने न्यारेपन को तो भूल गए ना, अच्छा 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 लगता है और कुछ ना अच्छा हुआ वो अच्छा नहीं लगता, इसको कर्मातीत नहीं कहा जाता। तब बाबा कहता है कि अगर कर्मातीत नहीं है तो ना चाहते हुए भी पता भी नहीं लगता हमसे विकर्म होते जाते हैं, दूसरे का दिल दुखाते जाते हैं, हम किसी से मिलके चल नहीं सकते, एक मत नहीं हो सकते, हम समझते हैं मेरी मत ही सबसे बढ़िया है, जो मैंने कहा वही दुनिया में होना चाहिए, तो और मेरा क्यों नहीं हुआ मेरा कहा हुआ, हम मूड भी ऑफ कर लेते हैं। तब करके बाबा कहते हैं कि जो कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या है, कि हमारे जो संकल्प है उसको हम अगर चेक करें तो संकल्प हमारे व्यर्थ संकल्प हैं, खराब संकल्प हैं, साधारण संकल्प हैं, प्रश्न चिन्ह वाले संकल्प हैं, ड्रामा एक्यूरेट है हम कहते भी हैं, फिर भी ऐसा क्यों, क्या वाई वाले संकल्प हैं, वाह वाह वाले संकल्प हैं, क्योंकि संकल्प जो ऑटोमेटिक चलेंगे वो इन श्रेणियों के होंगे, लेकिन शुभ संकल्प चलाना पड़ता है, शुभ संकल्प अपने आप नहीं चलता आज की दुनिया में, अन्य संकल्प ऑटोमेटिक चलते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी के, वो आपको कर्मातीत नहीं बनाएंगे। शुभ संकल्प अशुभ अपने को खत्म करेगा, और शुभ संकल्प जिसमें होता है मेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, सबका भला हो, भला ही भला हो, वो संकल्प जो है इन बंधनों से मुक्त करा के संबंधों में जोड़ेगा, वो हमारी जमा करेगा हमारी शक्तियों को, हमारे को शक्ति देगा कि जमा की हुई शक्ति जब हम यूज करना चाहें, जिस शक्ति को यूज करना चाहें, जितनी मात्रा में यूज करना चाहें उतना ही कर पाए। आप दादी गुलजार को देखिए, दादी गुलजार ने कभी तेज नहीं बोला, दादी गुलजार ने कभी ऊंचा नहीं बोला, दादी गुलजार का एक भी शब्द बता दीजिए जिसने किसी को दिल को दुख दिया हो, और एक भी शब्द बता दीजिए जिसने किसी के रूह को राहत ना पहुंचाई हो। दादी की मुस्कुराहट देखो कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का चला जाए वो वहां जाते ही उसका मुस्कुराहट को देखकर खुद मुस्कुराने लगता था। तो ये जो बाबा ने धारणा करवाई प्रैक्टिकल जीवन में, हम भी तो वही ज्ञान लेते हैं कि हम ये धारणा नहीं कर सकते, केवल अटेंशन की आवश्यकता है। इसलिए कर्मातीत वाला जो होगा उस रहम करेगा, ये नहीं कहेगा कि ये तो था इसके अधिकारी, मान लो कोई हमारा भाई बहन बीमार हो जाता है, दुखी है, हम कहेंगे इसके तो कर्म ही ऐसे थे, इसको तो ये फल मिलना ही चाहिए था, या इसने मेरे साथ ऐसे किया था अब मुझे मौका मिला है कि मैं इसके साथ ऐसे करूं। बदले का भाव रखें, ईर्ष्या का भाव रखें, घृणा का भाव रखें, तो ये तो देवता बनने की निशानियां नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो देवताओं की निशानियां हैं, जो दिव्यता गुणवान आत्माएं हैं, जो शक्तियों के द्वारा स्वयं भी अन्य अन्य चीजों से बचे रहते हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं, भला ही भला सोचते हैं, और बाबा ने कहा दुआएं देते हैं और दुआओं के पात्र बनते हैं, वो आत्माएं कर्मातीत हैं। तो हमें बहुत ज्ञान मिलता है, रोज ज्ञान मिलता है, रिवाइज होता है, बाबा की मुरली सब सुनते हैं, बाबा से योग लगा के सब शक्ति लेते हैं, लेकिन अपने दिनचर्या में देखेंगे थोड़ा थोड़ा जरा जरा किसी चीज से खिसक। जो बाबा ने हमें समझाया है एकाग्रता क्या होती है, एकाग्रता का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी समय कितने समय के लिए किसी बात पर कॉन्सेंट्रेट करें, नहीं, बाबा ने कहा एकाग्रता का मतलब यह है कि जिस समय जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो प्लान बना रहे हो, एक्यूरेट होना चाहिए, उस वक्त आपका उसमें आलस्य, अलबेलापन, भविष्य की बात सोचना, भूतकाल की बात सोचना, दूसरे का सोचना भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो लगातार एकाग्रता, जिसमें कहा बाबा ने कहा कि अपने मन को जब चाहें जहां चाहें जितना समय चाहें लगा सकें, वापस ला सकें। ये शक्ति जब हो कि सोने के वक्त आसानी से नींद आ जाए, जागने के वक्त सहज स्वाभाविक तौर पे आंख खुल जाए, कभी हमको थकावट महसूस ना हो, आराम करने की इच्छा ना हो, जरूरत ही ना हो, अलबेलापन बिल्कुल ना आए, आलस्य बिल्कुल ना आए, ये ना हो हम भगवान से मदद लेने की बजाय अपनी शक्ति से ही युद्ध करना शुरू कर दें, कभी सफलता मिले कभी दिल शिकस्त हो जाएं। ये सारी बातें बाबा कहते हैं ईश्वर के बच्चे जिनके स्वयं भगवान साथ है, जिनका अधिकार है परमात्मा की पद्मा पद्म गुना मदद लेने का, अगर वो भी कभी मेहनत करते हुए दिखाई दें, कभी सोच में दिखाई दें, कभी परेशान दिखाई दें, उनको रास्ता क्लियर ना दिखाई दे, उनकी बुद्धि में कुछ उलझन हो या उनके मन के अंदर जिसको बाबा कहते हैं क्लीन माइंड ना हो, मन के अंदर कुछ हो, कर उतना कर ना पाए, अंदर एक हो बाहर एक हो, उसको हमें चेक करना है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आज की दुनिया में कर्मों के प्रभाव में ना आए। ब्रह्मा कुमारीज में सबसे बड़ी कमजोरी है किसी से प्रभावित होना और या किसी को प्रभावित करना। बाबा कहता है, लोग कहते हैं ये बहन बहुत अच्छा ज्ञान समझाती है, ये भाई बहुत अच्छी सेवा करता है, तो कहने वाला ये नहीं कहता कि परमात्मा ने ये सेवाधारी परमात्मा की तरफ मेरा ध्यान लगवाता है, नहीं, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को मैं अपने नाम से प्रसारित करता हूँ, तो लोग कहते हैं वाह इसने कैसा ज्ञान दिया, मैं भूल जाता हूँ ये तो परमात्मा का प्रसाद है। तो बाबा कहते हैं प्रभावित करना या प्रभावित होना, पर चिंतन करना, सोच चिंतन ना करना, ये बहुत कमजोरी है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। हम निमित हैं, बाबा ने हमको निमित बनाया, बाबा तेरा शुक्रिया। और एक टेस्ट बाबा और बताता है मधुरता का, कि अगर हम देखें बाबा मुरली शुरू करता है मीठे मीठे बच्चे, अंत करता है मीठे मीठे बच्चे, हमारी मधुरता सदा रहती है, सबके साथ रहती है, स्वाभाविक रहती है या व्यवहारिक है। लोग स्वार्थ के अर्थ तो दुकानदार भी मीठा हो जाता है, दुनिया वाले भी मीठे हो जाते हैं, लेकिन हर हमारी मधुरता, मधुरता मीन्स हर चीज हर एक के साथ मधुरता, वो भी हमारा टेस्ट है। हमारे होंठों पर नेचुरल मुस्कान रहती है, हम सदा संतुष्ट रहते हैं, अपने से संतुष्ट रहते हैं, दूसरे से संतुष्ट रहते हैं, ये भी कुछ निशानियां हैं, इनको देखते हुए हम चेक कर सकते हैं हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा संबंध संपर्क, हमारा स्वभाव संस्कार कर्मातीत की ओर ले जा रहा है, या हम एक कर्म चुकतु करते हैं तो दूसरा धारण कर लेते हैं, पिछला उधार चुकाते हैं अगला खाता शुरू कर लेते हैं, बंधन में महसूस करते हैं, डीके होते हुए भी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति नहीं करते, हमें चेक करना चाहिए। ओम शांति।